रात के 3 बजे थे, अचानक बादल हटे, मेरा दिल धक से रह गया। मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि मध्यम चांदनी और बादलों की रोशनी में ही नहीं, बल्कि अपनी ही आभा के आलोक चमकता जो पर्वत सामने है, वह कैलाश है। इतना पास, एकदम सामने। मैं विस्फारित आंखों से चकित घुटनों के बल बैठी रह गई थी।
पेश है मनीषा कुलश्रेष्ठ की रिपोर्ट।
हमारे दल को अभी कुछ इंतजार करना पड़ता। घोड़े और कुली यही मिलते हैं। हर यात्री को पोर्टर के लिए 8 से 10 हज़ार रुपये और पौनी के साथ उसके मालिक को 30 हज़ार के करीब देना पड़ता है। हमारे साथ कोई झंझट नहीं था, पोनी हमको चाहिए नहीं था, हम पैदल चलने वाले थे। श्याम भैया ने हमसे तय कर लिया था कि वे हमारा सामान ले चलेंगे और हम पोर्टर की तयशुदा रकम उनको दे देंगे। शीला जी का भी आग्रह था कि इस बहाने वे कुछ अतिरिक्त आय कर लेगा। हमें क्या समस्या थी, बल्कि श्याम भैया से बेहतर और क्या होता। ये तिब्बती पोर्टर तो ठीक से बात भी नहीं करते हैं, न कुछ बताते चलते। गंतव्य पर पहुंचने की जल्दी में बस भागते हैं जल्दी जल्दी, जबकि मैं सब कुछ इत्मीनान से देखते हुए रुकते बैठते खाते पीते चलना चाहती थी। अंशु को हर जगह के फ़ोटो जो लेने थे। श्याम भैया ने कहा कि मैं और अंशु चलना आरम्भ करें। वे सबको घोड़े पर रवाना करके पीछे से आते हैं। मेरा दिल एक बारगी धक से हुआ। समूची परिक्रमा में घोड़ा न लेने की जिद मेरी ही थी। क्या मैं चल लूँगी 52 किलोमीटर? धूप, सर्दी, बरसात और उस समय पर वीरल ऑक्सीजन वाली हवा। पूरा ट्रेकर्स वाला तामझाम था। स्टिक, लाइट वेट ऑक्सीजन सिलेंडर, जैकेट, कैप, चश्मा, सनस्क्रीन, जेब में चॉकलेट्स। मन में प्रकृति की विराटता को नमन कर हम चले। हमारा बाकी सामान श्याम भैया के पास था। एक एक जोड़ा कपड़ा, एनर्जी फूड, कैमरे का सामान, रेनकोट्स। क्योंकि इस ऊंचाई पर जो लगातार बढ़नी ही थी, हम जो ऊनी परते पहने हुए थे उसमें ही सामान्य गति से चलने, वह भी गनीमत थी। यह तो तब, जबकि मैं और अंशु अपनी उम्र के हिसाब से खूब फिट हैं। अंशु तो हल्के फुल्के चुस्त और ऊर्जा से भरे हुए हैं ही, लेकिन श्याम जी भी 50 पार के थे और उनकी चुस्ती देख मैं दंग रह गई। शेरपा होना इस धरती पर हमेशा खुश रहने का विशेष गुण और प्रकृति की विषमता से जूझने की अपरिमित क्षमता लिए पैदा होना होता है। यम द्वार के पास तारबोचे चोटन में रंगीन झाड़ियों की कतारें फरफरा रही थी। ऐसा लग रहा था इन कतारों का एक सिरा आसमान पर और एक धरती पर बांधा हो। हमारे साथ ही पैदल चल रहे तिब्बती गाइड ने मुझे बताया कि ये तिब्बती त्यौहार सागा दावा के समय बांधी गई थी। यम द्वार से रवाना होते ही दाहिनी तरफ एक बहुत बड़ा बौद्ध मठ नज़र आता है। यह चकू गोम्पा था। वहाँ से कुछ अधेड़ लामा याक पर सामान लदवा कर निकल कर आ रहे थे। उन्होंने हमसे अभिवादन का आदान प्रदान किया। यम द्वार से निकल परिक्रमाकारी सीधे लहचू घाटी में उतर जाते हैं। यह उतरना आप में एक अनुभूति जगाता है कि आप एक विशालतम की सूक्ष्मता की खोज में बढ़ रहे हैं। वह सूक्ष्मतम है आपका अपना स्व। धरती के इन विशाल द्वारों से होकर ही मानो कोई स्वर्ग खुलता हो। विशाल भूरे पहाड़ों के बीचों बीच मीलों फैली घाटी और मृग मरीचिका से हर कदम पर दुरस्त होते जाते क्षितिज। प्रकृति की तुलिका क्या क्या रच देती है। हमारे साथ इस परिक्रमा मार्ग पर कोई भीड़ नहीं थी। पैदल बहुत कम लोग थे, एक दो यात्री ही पैदल आगे चल रहे थे। पोनी वाले कभी बगल से गुजर जाते, उनको देखकर मुझे लगा पैदल चलना आसान है। यम द्वार से डेरा पुक्का आरंभ में तो कमोबेश समतल ही है, आगे जाकर ऊंचाई सहज ही बढ़ जाती है। हमारे दल के लोग घोड़ों पर हमें पुकारते हुए गुजर गए। मुझे अच्छा लगा कि हम पैदल हैं, क्योंकि हमारे हाथ तो मुक्त थे फोटो खींचने के लिए। हम कहीं भी बैठ सकते थे, फूलों को छू सकते थे। इसी तरह लहचू घाटी में चलते चलते अचानक कैलाश का पश्चिम मुख प्रकट हुआ। मैं चौंक गई, यह कैलाश एकदम अलग दिख रहे थे। ये तो लगातार साथ चलती दो आंखें थीं। हम दाईं ओर से परिक्रमा कर रहे थे, यानी परिक्रमा के समय हमारा दायां भाग कैलाश की तरफ था। यह माना जाता है कि कैलाश शिखर स्वयं शिव हैं, साक्षात शिव, और इस दुनिया की सारी उपमाएं शिव के सामने बहुत ही छोटी हैं। उस पल हवा शांत थी, बादल बिना किसी दखलंदाजी के तैर रहे थे। संस्कृत में कैलाश का अर्थ क्रिस्टल है। बर्फ का एक विशाल क्रिस्टल हमारे सामने था। हम उस कोहिनूर की विशालता और शक्ति को महसूस कर रहे थे। एक घंटे के अंदर जब हम रास्ते में रुककर आराम और फोटोग्राफी कर रहे थे, श्याम जी भी वहाँ आ गए थे। हमें प्यास लगी थी, उन्होंने हमारे सामान से पानी निकालकर पिलाया। वे बुरी तरह लोडेड थे, उनके पास किसी एवरेस्ट के माउंटेनियर का गिफ्ट किया रक्सैक बैग था, जिसमें मेरे और अंशु के हल्के पिट्टू बैग, कैमरे का सामान और पानी ही था। हमने पूछा, इतना और सामान क्या है श्याम भैया? वे हंस दिए। हम समझ गए कि टूर ऑपरेटर का सामान भी वो ढो रहे थे, वो भी मुफ्त। आगे चलने पर उन्होंने उल्टी दिशा से परिक्रमा कारियों को आते देख बताया कि देखिए, बोनपा बाईं ओर से परिक्रमा करते हैं। कुछ बोनपा तो असंभव सी जान पड़ने वाली चरण प्रणाम परिक्रमा कर रहे थे, लेट लेट कर। मैं सोच रही थी कि पैदल चलकर कोई महान काम कर रही हूँ। फिलहाल हमारा लक्ष्य था कि हमें 10 किलोमीटर पैदल चलकर डेरा पुख पहुँचना है। मौसम तरह तरह के रूप दिखा रहा था। जब तक मौसम थोड़ा ठीक न हो गया, हम अपने चारों तरफ और नीचे की शानदार दृश्यावली का अब ठीक से आनंद नहीं ले पाए थे। अब हमारी मन और तन की थकान हरने को गंगा छू नदी की दूधिया पन्नाधार विपरीत दिशा में चलती बीच बीच में रास्ता काट रही थी। इस नदी को कैलाश गंगा भी कहते हैं। इसके मनोरम किनारों पर चलना आनंददायक होता है। गोल पत्थरों पर मचलती है, कैलाश से निकलती है, मगर यह गंगा नहीं, गंगा छू है। कई लोग यह भ्रम पालते हैं। पिघलता दूधिया पन्ना, पानी का यह रंग नया था मेरे लिए। घंटा भर चलने के बाद आकाश के नीले और धरा के घूसर को मिलाता हुआ श्वेत कैलाश का उत्तरी पश्चिमी मुख अचानक अप्रकट हुआ। तुषार शिखर की इस भंगिमा को देख कौन न रह जाता अवाक। उनके नीले चक्षु स्पष्ट दिख रहे थे। अंशु ने प्रणाम किया, मैंने भी अवाक हथेलियां जोड़ी और फिर बाहीं ही फैला दी। वह कैलाश हथेलियों में कहाँ आने वाला था, नहीं मात्र प्रणाम से मेरा मन भरता। यह कैलाश परिक्रमा का प्रथम दर्शन स्थल है। यह देखने के बाद थके हुए पैर आगे ही बढ़ सकते हैं, चाहे मार्ग कितना ही बाधित क्यों न हो। सांसों और ऑक्सीजन को लेकर हम एक्लिमेटाइज तो हो चुके थे, मगर शारीरिक श्रम तो हर कदम के साथ दोगुना लग रहा था। कैलाश हमारे दाईं तरफ हम पर आंखें गड़ाए थे। उनको घेरे थे नंगे भूरे बालुई पहाड़, जो अपने आकार प्रकार में बड़े रहस्य में लग रहे थे। उनमें अजीबोगरीब गुफाएं थीं, झरोखे थे, गलियारे थे, कहीं कहीं एकदम सन्नाटा हो जाता और बादल में से निकलकर कैलाश के नेत्र झांकते तो यह रहस्य गाढ़ा हो जाता। ऐसा लगता कि यह धरती नहीं कोई और कोई ग्रह है, यह कोई और ही वास्तविकता है। यमद्वार के आगे मुझे भी लगने लगा था कि असंख्य द्वार हैं, जो पास जाने पर खुलते जाते हैं। ये द्वार शारीरिक क्षमता के थे, मानसिक बल के थे, भीतर सोई आस्था के थे, भय के थे, इन रहस्यों के प्रति जिज्ञासा के थे, आने वाले खतरों के थे। अचानक मुझे लगा कि कहीं असंख्यों धीमी और मधुर बांसुरियों बजने लगी हैं। क्या इस कान के पर्दे भेदती हवा ने मेरे कान खराब कर दिए हैं, या यह कुछ अलौकिक घट रहा है? क्या ये केवल मुझे ही सुनाई पड़ रही है? मैंने अंशु से पूछा तो पहले तो उनको ये बांसुरी की धुन नहीं सुनाई दी थी, मगर थोड़ा आगे जाकर उनको सुनाई दी, शाम को भी। श्याम जी ने पुष्टि की कि इस मौसम में ऐसा होता है, जून जुलाई में आने पर ऐसा नहीं होता। यह बावरी हवा थी जो इन पहाड़ों के रंध्रों से होकर गुजरती तो गा उठती थी। मेरा मन भी गुनगुना रहा था ये अनजानी धुन। कैलाश का सामीप्य दिव्य अनुभव कराता है, और यह आरंभ था। कितना सामंजस्य है पहाड़ की ऊंचाइयों और मानव के मन में। मानव मन कहाँ कहाँ तक कल्पना कर लेता है। प्रकृति की इस विराट स्वरूप को देखकर पहले भय की अनुभूति हुई थी, अब तादम्य स्थापित होने लगा था। कुछ कुछ समझ आने लगा था कि कृष्ण के विराट स्वरूप को देखकर अर्जुन एकाएक क्यों दहल गए थे। संपूर्ण के साक्षात्कार को देखना आसान तो नहीं है ना। रहस्यमय पहाड़ों का विस्तार अपार मैदान में बदल गया। जहाँ घास थी पहाड़ियाँ थीं, छोटी छोटी पिघले पन्ने सी जलधाराएँ थीं, वहाँ पहाड़ियों के हरे ढलानों पर उछल कूद मचाते मारमोट रोडेंट्स थे, जो न खरगोश थे, न चूहे, न गिलहरी। ये तो कोई इस सब का मिला जुला सा कोई स्टफर्ड टॉय जैसे थे। मैं और अंशु रुककर उनके वीडियो लेने लगे। तमाम पौनी की सवारी वाले हमारे दल के यात्री काफ़ी आगे निकल गए थे। वे स्वयं को बहुत भाग्यशाली मान रहे थे, लेकिन मुझे उन पर तरस आया जब हमने एक दूरी पर चार कस्तूरी मृग विचरण करते देखे। मैं तो जन्मजात प्रकृति पुत्री, मेरे लिए कैलाश की खोज उनके आसपास फैले प्रकृति के हर आयाम की खोज भी है। मेरी आत्मा यह मानती है कि शिवत्व का एक विराट पक्ष स्वयं प्रकृति है, वरना शिव यहाँ हिमालय की दुर्गमता क्यों चुनते। 10 किलोमीटर चलकर हम एक टेंट में रुके। हमारे साथ हमारा पैक्ड लंच था, पुलाव और दही। हमने घास में बैठकर खाया, वहाँ की तिब्बती नमकीन चाय पी। हमारे सामने से गले में घंटी वाले याक सामान लादे जा रहे थे। उनकी घंटियों की गूंज घाटी में इको हो रही थी। तिब्बत के मनोरम और भीषण रहस्य प्रकृति की गोद में ही छिपे थे। इन भावनाओं में नाचते थे यहाँ के मौसम। यह मुझे समझ आ गया था। कहते हैं 20 मिलियन साल पहले तिब्बत समुद्र में सोता था। विश्वास नहीं होता ना कि संसार की यह छत कभी नींव के नीचे भी सोती थी। वर्तमान में यह जिस आकार और जिस ढंग से अवस्थित है, वह बड़ी अनोखी अवस्था है, जिसकी धरती की सतह पर उभरना समूचे मध्य एशिया में तरह तरह की महागाथाओं में वर्णित किया जाता है। सोचो किसी धरती के भीतर दो गतिमान विशालकाय पिंडों के टकराने से एक समुद्र में सोती हुई सतह उभरी होगी। इस पर समुद्र तल की समानांतर परतों की एक लंबी ऊंची श्रृंखला बनती चली गई होगी। इन लहरदार परतों के ऊपरी हिस्सों को हिंद महासागर से आती मानसूनी हवाओं ने सपाट कर दिया होगा और लानों की जलोढ़ मिट्टी ने पाट दिया होगा। तब बना होगी चांगतांग विशाल उत्तरी तिब्बती पठार, जो समुद्र तल से लगभग 16,000 फीट पर तन कर खड़ा होता है। हम उस टेंट नुमा टी हाउस से बाहर निकले तो काले काले बादल घिराए। मौसम एकदम बिगड़ गया था। श्याम जी ने हमें हमारे रेनकोट्स निकाल कर दिए। 10 किलोमीटर इस ऊंचाई पर चलना मेरी शारीरिक क्षमता की पराकाष्ठा थी कि अचानक मानो इस खेल में बरसात के मारक छींटों ने डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दिया। आगे बढ़ते रहने के सिवा कोई चारा नहीं था। 5 किलोमीटर और, श्याम जी ने दूर एक पहाड़ दिखाकर कहा, उसके पीछे एक पहाड़, वही तलहटी में डेरापुक है। डेरापुक के लिए अब चढ़ाई आ गई थी। मेरा दूसरा साक्षात्कार था हिमालय की सांस उखाड़ देने वाली चढ़ाई से। एक बार नॉर्थ सिक्किम में 0 पॉइंट पर मुझे हायोपिक्सिया की जानलेवा मीठी नींद से परिचय हुआ था। यहाँ भी चढ़ते समय मुझे सांस लेने में कठिनाई होने लगी थी और मुझे ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन के पफ लेने पड़े। मेरी गति एकदम कम हो गई थी। अंशु और श्याम जी मेरे कारण धीरे चल रहे थे। एक सांस भरो, एक कदम चढ़ो कि अंशु की फौजी हिदायत पर अमल कर रही थी। अंतहीन चलने रहने के बाद दूर एक मठ दिखा। कैलाश की परिक्रमा और मानसरोवर की परिधि में अनेक प्राचीन बौद्ध मठ बने हुए हैं। प्राचीन काल से ही यहाँ लामा आदि तपस्या करते आए हैं। तिब्बत के लोग इन मठों में गहरी आस्था रखते हैं। इनको चीनी सैनिक आकर नष्ट भी करते हैं, मगर इनकी आस्था है कि कम नहीं होती। कुछ शिव भक्त कैलाश के इनर कोर की भी परिक्रमा कर रहे थे। लोग कहते हैं कि ये परिक्रमा बहुत ही कठिन है, क्योंकि बिल्कुल कैलाश पर्वत के आधार से ही लगकर यह परिक्रमा पूरी होती है। इस परिक्रमा में कैलाश कभी ओझल नहीं होता। वहाँ पर एक पहाड़ी पर संकरी दुर्गम रास्तों के बीच सप्तऋषि गुफाएं भी हैं, जहाँ पर कहते हैं कि सप्तऋषियों ने तपस्या की थी। लेकिन इस परिक्रमा के लिए विशिष्ट परमिट बनता है और उसके लिए स्वास्थ्य भी आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। मैंने खुद से सवाल पूछा, क्या मैं कभी कर सकूंगी इनर कोर की ये परिक्रमा? जवाब मिला, क्या तुम आओगी दोबारा? निर्बल होता शरीर कुनपुनाया शायद ही। इनर कोर परिक्रमा में एक कुबेर का मंदिर भी पड़ता है। कुबेर यानी अलका नगरी, यानी कालिदास, जो कहते हैं कि कैलाश की गोद से प्रणयनी सी अलका नीचे खिसका जा रहा होगा, जिसका गंगा रूपी दुकूल, आहा वह अलका यहीं कहीं विलुप्त है। तत्स्युत गंगे प्रणयनैव श्रस्त गंगा दुकुलाम, न त्वं दृष्टवा न पुनर्लकाम, ज्ञासस्य कामचारीन, या वह काले वहति सलिलोद्गार मुच्चेविरमाना, मुक्त जाल ग्रथित मलकम कामिनी वाभ्रभृंदम। वह मठ जो नज़दीक ही दिख रहा था मग मरीचिका निकला। हम फिर चढ़ने लगे। मैं अपनी क्षमता से आगे जाने की कोशिश में थी, मगर एक जगह आकर मुझे चक्कर आए और मैं कॉलेप्स हो गई। डेरा पुक्का हमारा डेरा सामने ही था। मुझे गिरता देख शीला जी के सहयोगी कृष्ण जी और तिब्बती गाइड दौड़ कर आए और मुझे पकड़कर ऊपर ले जाया गया। हम जब पहुंचे तो दोपहर बीत रही थी, लेकिन मौसम बहुत ख़राब था, लगातार बरसात ही बरसात। डेरा पुक पहुँचने पर जो उत्तरमुखी दर्शन की चाह थी उसे दुष्ट मेघ ने लील लिया था। वह कैलाश से ऐसा जा लिपटा कि मुझे कैलाश की झलक तक नहीं मिली। डेरा पुक कैलाश परिक्रमा का पहला ही पड़ाव है। इसका असली नाम डेरा पुक है। डेरा यानी याक के सींग और पुक यानी गुफा। हमने यहाँ पहुँचते ही गरम गरम चाय पी, उसके बाद हमारे लिए गरम खाना तैयार हो रहा था। मैं थकान से पस्त ऑक्सीजन के 3 पफ लेकर बिस्तर में जा लेटी। हमारे कमरे में शीला जी के अलावा एक दंपति और थे। उनमें से जो महिला थी उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी थी। उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि उनके मस्तिष्क में सूजन आ गई है और शीला जी काफ़ी परेशान थी। शीला जी चाहती थी कि उनको यहीं से नीचे दार्चेन पहुँचाया जाए, लेकिन महिला थी कि जिद पर अड़ी हुई थी कि वह आगे की परिक्रमा करेंगी। खाना खाने के बाद भी हमारे सहयात्री की तबीयत सुधरने को नहीं आई। उनके पति लगातार उनकी सेवा कर रहे थे। मेरे पास वाले पलंग पर अंशु तो थक कर गहरी नींद सो गए थे। एक तो पहाड़ों की नींद बड़ी औचक थी, हम अपनी ही सांस बेतरतीब हुई कि उचटी, तो मैं सोने और जागने के बीच थी। एक ही कमरे में हम 5 लोग थे, उनमें वह महिला भी थी जो बेहद ही बीमार थी। आधी रात बीतने तक तो उसके दिमाग में सूजन आ गई थी। वह रह रहकर वह हाँफते हुए जाग जाती और उसे लगातार गर्म पानी पीने के कारण बार बार उठकर लघु शंका के लिए पहाड़ी पर बने हमारे वाले मड हाउस के पीछे खुले में जाना पड़ रहा था। उसके हर बार उठने पर जो हलचल होती मेरी नींद खुल जाती। जब शीला जी भी सो गईं तो एक बार फिर उठकर उनके साथ मुझे जाना पड़ा। उनके पति कृष्णा जी से दवा लेने गए हुए थे। हम लघु शंका के लिए कच्ची ज़मीन पर एक दलान पर बैठे। उस वक्त 3 बजे थे। यूं तो पूरी रात आकाश बादल के ही हो गए थे, लेकिन उस पल अचानक बादल हट गए। मेरा दिल धक से रह गया। मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि मध्यम चांदनी और बादलों की रोशनी में नहीं बल्कि अपनी ही आभा के आलोक चमकता जो पर्वत सामने है वह कैलाश है। इतना पास, एकदम सामने। मैं विस्फोरित आंखों से चकित घुटनों के बल बैठी रह गई थी। डॉयमॉक्स दवा का असर कि मेरा ब्लडर खाली होने का नाम नहीं ले रहा था। मुझे अपनी बस में एक गुजराती श्रद्धालु का वाक्य याद आ रहा था। वो काई के कैलाशनाथ तो ठहरा अघोरी, उनके आगे शरीर का होना ना होना बराबर। यानी आपका हर आदिमपन स्वीकार्य है कैलाश को। मैं कुछ देर वैसे ही बैठी रही, फिर एक डगमग पत्थर का सहारा लेकर खड़ी हुई। बादलों के आसमान से हटते ही हवा का तीखा तेज असहनीय प्रवाह चल पड़ा। वह महिला जा चुकी थी, मैं अकेली खड़ी थी। 2-2 मोज़ों पर चप्पल फंसाए, मोटी जैकेट पहने मगर बिना टोपी। हवा मेरे कान में लगातार सीटी बजा रही थी और लग रहा था कि कान के पर्दे जमने को हैं, मगर मैं संज्ञा शून्य और निश्चेत खड़ी रही। ये 1-to-1 साक्षात्कार था कैलाश और मेरे बीच। मुझे अति प्रसन्न होना था, उत्साह में भर नतमस्तक हो जाना था, कुछ नहीं तो उस दालान की भीषणता और अंधेरे से डर जाना चाहिए था। लेकिन मेरे भीतर इतना भीषण वैराग्य जागा कि मेरे और कैलाश के बीच उस क्षण केवल महाशून्य था। मुझे नहीं पता था कि मैं 16,600 फीट की ऊंचाई पर रात के 3 बजे डेरापुक नामक इस पहाड़ के तीखे दालान पर खुद को भूलकर क्या रह रही हूँ। ये कालिदास के ताजे तराशे हाथी दांत सा मोहक कैलाश, यहाँ बड़ी कटोरी जैसी आँखें अनेकों आँखों से मुझे क्यों ताक रही हैं। ये आकाश गंगा, इन पर ये चूर्ण सा क्या बरसा रही हैं। मैं देखकर भी नहीं देख रही थी कि कैलाश के आसपास के पर्वत श्रृंखला से बादलों के बीच बीच में चांद ऊपर उठ जाता था और अपनी चांदनी फैलाने लगता था। उस चांदनी में बर्फ सी जो पर्वत चोटियाँ अजब गजब सी चमकती थीं, जैसे उन पर किसी ने चांदी के रंग का बुरादा फैला दिया हो। मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों में आकाश जब साफ होता है तो कुछ ज़्यादा ही साफ होता है। चांदनी में डूबा यह समूची नैसर्गिक दृश्य अब मुझे लुभाने लगा था। इसमें एक इंद्रजाल, एक सम्मोहन था। सिहरती उल्काओं के प्रकाश में, ब्रह्मांड की नसीमता में, विहस्ती तारिकाओं के बीच में विराट और अटल कैलाश। इस धरा के रहस्यों पर चलता आस्था के दिए के लौ की कोमल उष्णता में मोम सा पिघलता, शिखरों के मध्य चमकता पर्वत नदियों का उद्गम, यह कैलाश मेरे समक्ष है। ओह यह कौन सा पल है। कैलाश के सामने आने पर धीरे धीरे मानव के समक्ष कैसे शाश्वत सत्यम शिवम और सुंदरम का उद्घाटन होने लगता है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। एक अजीब किस्म का आनंद मेरे रोम रोम में बह रहा था। क्या यही था वह अनहद आनंद, प्रकृति के अनहद आनंद के बीच प्रवृत्ति की चंचलता का पलायन। मैं इस वक्त भीतर बाहर से रिक्त थी। अब मैं ही दृष्टा और मैं ही दृश्य थी। अब मुझे संपूर्णता का आभास था। रात मुझे नहीं मालूम नींद में बीती थी कि मैं बेहोशी में विश्वास के साथ कुछ कह नहीं सकती थी। मन में जैसे कोई इच्छा शेष नहीं रह गई थी। सब कामनाएं न जाने कहाँ बिला गई थी। पाप रहित होने का तो मैं दावा नहीं कर सकती, क्योंकि वहाँ मुझे पुण्य पाप की विभाजक रेखा ही नहीं मिली। मन इच्छा रहित था, आँखें नम थीं। मुझे अनुभव हुआ कि मैं कैलाश में समाहित हो गई हूँ। अब इस सृष्टि में कोई अंतर नहीं था। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। मेरे गालों पर पानी महसूस हुआ तो मैंने आकाश की तरफ देखा, वह साफ था। मुझे हैरानी हुई कि मेरी ही आँखों से आंसू प्रवाहित हो रहे थे। मुझे नहीं मालूम मैं कितनी देर वहाँ खड़ी रही। जब मैं नहीं लौटी होंगी तो अंशु खोजते हुए आए होंगे। उस तब्बता को किसी हाल में भंग किया नहीं जा सकता था। वे भी खामोश मेरी बगल में थे। दोनों की सांसें गूंज रही थी सन्नाटे में, मेरी तेज और उखड़ी उनकी लयबद्ध सधी। 5 मिनट बाद उन्हें याद आया तो वे कैमरा लेकर लौटे। जल्दी जल्दी तस्वीरें ली और कुछ मिनट के जादू को दिखाने के बाद बादलों ने फिर कैलाश को ले लिया था। हम निशब्द अपने कमरे में लौटकर बिस्तरों में जा घुसे। कमरे में शीला जी परेशान थी। हमने देखा कि उस महिला को दार्चेन वापस ले जाने के लिए घोड़ा आ गया था। वह दिमागी सूजन यानी हाइपोक्सिया से लगभग बेहोश हो चुकी थी। स्वयं मेरे लिए भी इतनी देर तक बाहर खड़े रहने के कारण सांस लेना श्रमसाध्य हो रहा था। अंशु ने मुझे तुरंत ऑक्सीजन लेने को कहा। मैंने 5 गहरे पफ लिए ऑक्सीजन सिलेंडर से, फिर सामान्य हो पाई। मैं उस महिला के लिए चिंतित हो गई कि सुबह के 4 बजे अंधेरे में घोड़े पर दार्चेन लौटना क्या आसान होगा, कितना भीषण और हवा और ठंडा। मगर या तो पीछे जाया जा सकता था या आगे। मुझे तो भीषण दुर्गमता थी। डोलमाला पीक 19,000 फीट पर। उस महिला के जाने पर मैं सोई ही होंगी कि 1 घंटे में ही फिर हलचल आरंभ हो गई थी। पौनी वाले आकर शोर मचाने लगे थे। चलो चलो हम लेट हो रहे हैं, क्योंकि हमने पैदल जाना था। अगली सुबह 20 अगस्त को घोड़ों पर जाने वाले लोगों के घोड़े वाले आकर दरवाजे पर दस्तक देने लगे थे। पैदल चलने वालों को तो पहले निकलना था, सो हमने चाय और ब्रेड के कुछ निवाले खाए। बॉर्नविटा अंशु को सख्त नापसंद है, पर उस रोज़ हमने एक एक गिलास पिया। हमारे शोर पर श्याम भैया आ गए। वे हमें सुबह उठकर भी डेरा पुक के डेरे से निकाल कर एक जगह ले गए। वहाँ हमने देखा बादलों को भेद सूर्य की किरणें कैलाश को पिघलते सोने सा नहला रही थी। आसमान में सतरंगी रोशनी के पुंज मुझे ही दिख रहे थे कि दृश्य भ्रम था, न कोई सपना सलोना नहीं था, परावर्तित किरणों का जादू ही था। अंशु ने कैमरा साधा और कई छवियां ले डाली। सुबह हवा शांत थी। जहां तक दृष्टिगोचर था संपूर्ण जगत समाधिलीन था। कैलाश के उत्तर मुख से हम विदा लेने वाले थे। नमामि देवम वरदम परिण्यम, नमामि देवम च सदा सनातनम, नमामि देवधामी स्वरम नमामि शंभुवम जगदेक बंधु।